दिन भर 4 अप्रैल दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फदल। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की पहली बैठक में किसानों के 1,00,000 रुपए तक के कर्ज की माफी। उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों के खिलाफ अभियान तेज हुआ।
रोज ठेके वाले आदमी आते हैं, दारू पीते हैं, रोड पे बैठते हैं। हम सभी लेडीजों का यहाँ से निकलना बहुत दुश्वार हो जाता है। आपस में सब मिलते टांटिंग भी कसते हैं कुछ लोग।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के सज्जादा नशी ने सलाह दी, पूरे भारत में गौ हत्या पर रोक लगे।
और पूरे गौवंश के जो है उसके भलाई के लिए, उसके बचाव के लिए हमें पाबंदी लगाना जरूरी है।
देंगे श्रद्धांजलि जानी मानी शास्त्रीय संगीत गायिका किशोरी अमोनकर को। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ योगी सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगाई गई है। इनमें किसानों से जुड़े कई फैसले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा के मुताबिक बैठक में फैसला लिया गया है कि सरकार के मंत्री गेहूं खरीद की निगरानी करेंगे। प्रदेश सरकार 5,000 केंद्रों पर गेहूं खरीदने की व्यवस्था करेगी। सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले इदलिब प्रांत में हुए संदिग्ध गैस हमले में कम से कम 58 लोगों के मारे जाने की खबर है। ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक खान शेखो कस्बे में हुए हमले में मरने वालों में से ज्यादातर आम लोग हैं। सरकार के एक सूत्र के मुताबिक इस इलाके में रासायनिक हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सीरियन व्हाइट हेलमेट्स के एक कार्यकर्ता इस्माइल अब्दुल्ला ने अल जजीरा टीवी को बताया। उन्होंने बंकर तबाह करने वाले और क्लस्टर बम समेत सभी हथियारों का इस्तेमाल किया। सुबह के वक्त उन्होंने रासायनिक हथियार का इस्तेमाल किया। मौके पर पहुंची टीमों ने देखा कि किस तरह लोगों का दम घुट रहा है। उन्होंने पाया कि पीड़ितों में से ज्यादातर बच्चे हैं। सभी अस्पतालों में लोगों की भीड़ है। आने वाले घंटों में मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। ये थे इस्माइल अब्दुल्ला के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि सीरिया के संदिग्ध गैस हमले की प्राथमिक जवाबदेही सरकार की है। यूरोपीय यूनियन की विदेश नीति प्रमुख फेडरिका मोगेरिनी ने कहा कि सरकार का कर्तव्य लोगों की रक्षा करना है, उन पर हमला करना नहीं। फ्रांस ने इस मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने की मांग की है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत में ये मामला उठाया। रूस का कहना है कि उसके विमान हमले में शामिल नहीं थे। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग मेट्रो में हुए धमाके की जांच कर रहे अधिकारियों का कहना है कि हमले का मुख्य संदिग्ध किर्गिस्तान मूल का रूसी नागरिक अकबर जोन दलीलोफ है। अधिकारियों के मुताबिक जिस बम से धमाका हुआ वो उसी ने लगाया था। अधिकारियों के मुताबिक जिस दूसरे बम को नाकाम कर दिया गया था उस पर जलीलोफ के डीएनए मिले हैं। कल हुए बम धमाके में 14 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। दक्षिण अफ्रीका की ट्रेड यूनियन फेडरेशन कोसाटू ने राष्ट्रपति जैकब जुमा से पद छोड़ने को कहा है। ये सत्ताधारी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की अहम सहयोगी है। गठबंधन के एक अन्य सहयोगी साउथ अफ्रीकन कम्युनिस्ट पार्टी पहले ही कह चुकी है कि अब जुमा की विदाई का वक्त आ गया है। बीते महीने वित्त मंत्री की छुट्टी करने के बाद से राष्ट्रपति पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। वो कई बार अपने फैसले को सही ठहराने की कोशिश कर चुके हैं। एक दुर्लभ गुलाबी हीरे ने हांगकांग में हुई नीलामी में 7,10,00,000 डॉलर यानी करीब 4,62,00,00,000 रुपए हासिल कर नया रिकॉर्ड बनाया है। पिंक स्टार नाम का यह हीरा 59.6 कैरेट का है। सदबीज नीलामी घर के मुताबिक इस हीरे को हांगकांग के ज्वेलर चाओ ताई फुक ने खरीदा है। 77 डायमंड्स के प्रमुख अलेक्जेंडर ब्रेकनर ने बीबीसी को बताया। ये अब तक का सबसे बड़ा गुलाबी हीरा है। इसका रंग अद्भुत है। हीरे में जो रंग की तीव्रता मिल सकती है इसमें वो सबसे ऊंचे स्तर पर है। आकार इस हीरे को दुर्लभ और बेहद सुंदर रूप देता है। ये थे अलेक्जेंडर ब्रेकनर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सोमालिया के गैडो क्षेत्र से 4 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को अगवा किए जाने की खबर है। ये चारों विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए काम कर रहे थे और पोलियो टीकाकरण अभियान से जुड़े थे। कुछ स्थानीय रिपोर्टों में बताया गया है कि उन्हें अल शबाब ने अगवा किया है, लेकिन इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं हुई है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। उत्तर प्रदेश की नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक समाप्त हो गई है और उसमें कई बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। शुरू में संकेत थे कि किसानों के लिए बड़ा फैसला होना है, 86 लाख किसानों के ऋणों को माफ़ करने की बात थी। इस समय संवाददाता सम्मेलन किया जा रहा है और इस मंत्रिमंडल में लिए गए फैसले की जानकारी दी जा रही है। सीधे चलते हैं लखनऊ समीर आत्मन मिश्र के पास। समीर, क्या खबर है अब तक आपके पास?
जी रेहन साहब, जैसा आपने कहा कि अभी संवाददाता सम्मेलन चल रहा है और सिद्धार्थनाथ सिंह इस समय महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दे रहे हैं। इससे पहले जो मंत्री है श्रीकांत शर्मा, उन्होंने इसके बारे में बताया। एक अहम बात बताई कि 9वीं है और 9 अहम फैसले कैबिनेट ने लिए हैं, ये बात सिद्धार्थनाथ सिंह ने कही। और अभी जैसे ही मैं बाहर अभी हूँ तो इस समय वो कृषि ऋण माफी की ही बात कर रहे थे, जिसका जिक्र आपने अभी शुरुआत में किया कि करीब 86 लाख किसानों के ऋण माफी की बात कैबिनेट ने मंजूर की है। इसमें लघु जो छोटे और सीमांत किसान आते हैं, यानी जिनके पास करीब 5 एकड़ से कम जमीन है और उनको छोटे किसान कहा जाता है, और 2.5 एकड़ से कम जमीन जिनके पास है वो सीमांत किसानों में आते हैं, तो उनके जो अभी तक 1 लाख रुपए उनके ऊपर जो कर्ज था वो अभी सरकार ने माफ करने का ऐलान किया है। इस कैबिनेट की बैठक में जो सबसे अहम फैसला जिसको कहा जा सकता है और जिसपे लोगों की निगाहें भी थी कि इसका इंतजार था लोगों को, हालांकि उम्मीदें बहुत लंबी चौड़ी की जा रही थी, लेकिन कैबिनेट ने फिलहाल अभी यही फैसला किया है। जो किसके लिए केंद्र सरकार ने किसी तरह की मदद का भरोसा नहीं दिया था, तो इस माना यही जा रहा था कि बहुत तो बड़ी घोषणा भले ही न हो लेकिन कुछ न कुछ घोषणा होगी, तो उसके लिए सरकार ने ये किया है। और इस बताया जा रहा है कि इस पे 36,000 करोड़ रुपए का करीब सरकार के ऊपर बोझ आएगा। इसके अलावा कृषि और दूसरी चीजों से जुड़े हुए कई फैसले किए गए हैं। अभी तक जो 2 महत्वपूर्ण अभियान चल रहे थे सरकार के, अवैध बूचड़खानों के, स्लॉटर हाउसेस के, उसके बारे में भी सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि ये अभियान जारी रहेगा। इस पे कैबिनेट ने भी अब मुहर लगा दी है और उन्होंने एक जानकारी ये भी दी कि अभी तक 26 अवैध बूचड़खानों को बंद किया गया है। इसके अलावा इनका जो एंटी रोमियो दस्ता है उसकी भी बड़ी प्रशंसा की उन्होंने, और ये कहा कि ये चीजें अभी जारी रहेंगी, आगे और तीव्रता से चलती रहेंगी। और इस ये सारी चीजें जो महत्वपूर्ण फैसले हैं ये कैबिनेट में लिए गए हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद समीर आपका, और इन फैसलों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट आप सुबह के कार्यक्रम नमस्कार भारत में सुन पाएंगे। कानपुर में शराब की दुकानों के खिलाफ जो विरोध शनिवार से शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अब सिर्फ कानपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में भी शराब की दुकानों और स्थानीय लोगों के निशाने पर हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राजमार्गों पर शराब की दुकानों को बंद किए जाने के बाद इन दुकानों को शहरी इलाकों में शिफ्ट किए जाने के अभियान के खिलाफ कुछ क्षेत्रों में महिलाओं ने प्रदर्शन किए हैं। कानपुर से रोहित जोशी की रिपोर्ट।
कानपुर में मंगलवार को शहर के बीचों बीच स्थित बजरिया मोहल्ले में 3 शराब की दुकानों पे लोगों ने हल्ला बोल दिया। बजरिया में मंगलवार सुबह शराब की 3 दुकानें सुबह खुली ही थी कि लोगों के एक हुजूम ने दुकानों पे पथराव शुरू कर दिया। दुकान वाले जैसे तैसे दुकानों को बंद करके भाग खड़े हुए। बजरिया की एक स्थानीय महिला इंदुमती ने कहा,
चार लोग हैं जो रोज ठेके वाले आदमी आते हैं, दारू पीते हैं, रोड पे बैठते हैं। हम सभी लेडीजों का यहाँ से निकलना बहुत दुश्वार हो जाता है। हम लोग निकलते हैं, सब मार्केट जाना रहता है, आपस में सब मिलते टांटिंग भी कसते हैं कुछ लोग, लेकिन हम लोग कभी हम लोगों ने शिकायत भी की है कई जगह, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स हम लोगों को नहीं मिलता।
सोमवार को कानपुर में शराब बिकने के विरोध में कुक्कू नाम के एक व्यक्ति ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल के आत्मदाह करने की कोशिश की। कुक्कू का कहना है,
ठेका बंद करने को लेकर इससे पहले भी हमने लोगों ने प्रदर्शन किया था तो अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं। अब हमारे यहाँ क्षेत्र में काफी घर बर्बाद हो गए, इसी को लेकर सभी महिलाओं ने उठाया है बीड़ा कि ये ठेका यहाँ से कहीं भी और ले जाए लेकिन इस क्षेत्र में न रखा जाए।
कानपुर में जो भी हो रहा है उससे शराब कारोबारी भी चिंतित है। उनका कहना है कि वो जो भी कर रहे हैं कानून के दायरे में ही कर रहे हैं। शराब की दुकान चलाने वाले राम नगीना सिंह कहते हैं,
जब शासन ने का अनुज्ञापन दिया है, अनुज्ञापन में इसकी 14 अंकित है कि इसी परिधि में दुकान संचालित होगी चाहे जो भी हो, और उसके बाद स्थानीय तत्व द्वारा या अन्य किसी के द्वारा दुकान में बाधा दी जाती है तो ये निश्चित रूप से मेरी हानि नहीं है, ये राजस्व की हानि है।
शराब की दुकानों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की खबरें वाराणसी, बलिया, आजमगढ़, हाथरस, जौनपुर से भी आ रही हैं, पर अभी तक ना ही पुलिस प्रशासन कुछ कहने को तैयार है और ना ही एक्साइज विभाग। रोहित घोष, BBC कानपुर।
जैसा कि आपने सुना, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय और राजमार्गों से 500 मीटर तक के दायरे में आने वाली सभी शराब की दुकानों, रेस्तरां या होटल वगैरह के शराब बेचने पर पाबंदी लगा दी थी। एक तरफ जहां इस फैसले को ऐतिहासिक बताया गया है, वहीं दूसरी तरफ इसके चलते राज्यों को होने वाले हजारों करोड़ के नुकसान से चिंताएं भी बढ़ी हैं। नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
क्या आपको पता है कि भारत के लगभग सभी राज्यों में आय का दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा जरिया क्या है? वो है शराब की बिक्री। मिसाल के तौर पर कर्नाटक में सालाना 15,200 करोड़ रुपए की आय शराब की बिक्री से होती है, जो उसकी कुल आय का करीब 14% है। या उत्तर प्रदेश में ये आय करीब 18,000 करोड़ रुपए सालाना के आसपास है, जबकि महाराष्ट्र में शराब की बिक्री से होने वाली आय सालाना 20,000 करोड़ के करीब है। इस तरह के तमाम आंकड़े तब से गिरने की कगार पर हैं जब से सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय और राजमार्गों के 500 मीटर तक दायरे में शराब की दुकानें, रेस्टोरेंट और होटलों को बंद करने का आदेश दिया है। ये निर्णय सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिहाज से अहम बताया गया है और तमाम सरकारों, संगठनों वगैरह ने इसकी बहुत तारीफ की है। वजह साफ है, भारत ने सड़क दुर्घटनाओं और खासतौर से राष्ट्रीय और राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं में खतरनाक इजाफा देखा गया था। लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट के इस नए आदेश से भारत की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और राज्य प्रशासनों में हड़कंप समझ गया है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सचिव राहुल सिंह ने बताया।
देखिए, ये 3 साल पुराना केस है जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। 15 दिसंबर को एक कोर्ट ऑर्डर आया था, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा था कि ये जो लेकर लोग ठेके में जाके जो हाईवे जो मोटरिस्ट होते हैं वो लोग कभी भी आराम से उनको शराब है वो मिल जाती है और उसको लेके वो पीते हैं, ड्रंक ड्राइविंग करते हैं, उसमें काफी सारे ड्रंक ड्राइविंग केसेस हुए हैं और ये लिकर वेंट के लिए था और वो बिल्कुल सही था। तो 31 मार्च को जब ये ऑर्डर वापस से पिटीशन में आया तो उन्होंने उसमें लास्ट मिनट पे उस पर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जो कि एक सर्विस इंडस्ट्री है जहाँ पे सेल नहीं होती है, सर्विस होती है, और उसको भी इसमें डाल दिया। जिस तरह का नुकसान अभी हमारे पास क्वांटिफाई नहीं हो पाया है, बट अबाउट 1,00,000 करोड़ रुपए का अनुमान करा जा रहा है।
विश्लेषकों का अनुमान है कि इस आदेश से दसियों हजार ऐसे रेस्टोरेंट, मोटेल और होटल प्रभावित होंगे जो न सिर्फ हाईवे पर बल्कि उससे थोड़ा हटकर भी बने थे और राज्यों में बड़े कर के भागीदार भी थे। नीति आयोग के प्रमुख अमिताभ कांत ने भी इस फैसले के चलते एक ट्वीट में करीब 10 लाख नौकरियों के ऊपर मंडराने वाले खतरे का जिक्र किया है। पिछले साल शराब की बिक्री में 25 सालों में पहली बार 0.4% गिरावट दिखी थी और कुछ राज्यों में शराबबंदी के चलते इसके बढ़ने की आशंका भी रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सेहत और स्वास्थ्य के लिहाज से बेहतरीन कहा गया है। महंगी शराबों और भारत में शराब की चुनिंदा मैगजीनों में से एक स्पिरिट्स के संपादक बिशन कुमार के मुताबिक फैसले के दो पहलू हैं। उन्होंने कहा,
सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिंसिपल पे उसने अपना फैसले को आधारित किया हुआ है कि राइट टू लाइफ के आगे सारे जो भी चीजें हैं वो छोटी हो जाती हैं। लेकिन उसके साथ ये भी देखना चाहिए था कि जो हमारा ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर है, फूड और लिकर सेक्टर है, ये बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है। ये करीब देश में 2-2.5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, जो कि रेलवे से करीब 1.6 टाइम ज्यादा है और बॉलीवुड से आप कंपेयर करें जो 24 गुना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है। इनके लोगों का जॉब पे बहुत गहरा असर पड़ेगा।
बहरहाल फिलहाल की हकीकत यह है कि जो प्रारंभिक अनुमान आ रहे हैं उनके मुताबिक राज्यों की कुल कर आय में इस फैसले से करीब 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। नितिन श्रीवास्तव, BBC दिल्ली।
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फतल के साथ। अमेरिका ने संकेत दिए हैं कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने में भूमिका निभाने के लिए तैयार है। आइए सीधे चलते हैं वॉशिंगटन, ब्रजेश उपाध्याय के पास। ब्रजेश, पहले तो ये बताइए, क्या विवरण है आपके पास इस बारे में?
देखें, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की जो राजदूत है निकी हेली, उन्होंने बयान दिया है कि ट्रंप प्रशासन भारत पाक रिश्तों को लेकर चिंतित है और तनाव को खत्म करना चाहता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस तनाव को कम करने की कोशिशों का हिस्सा बने उसके लिए बातचीत की जाएगी और कोई घटना हो जाए उसके लिए हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके सदस्य भाग ले सकते हैं और कोई हैरत की बात नहीं कि राष्ट्रपति ट्रंप भी इसमें भाग ले। ये बयान अमेरिका की कई बरसों से चली आ रही नीति से हटकर है, क्योंकि अब तक वो कहता रहा है कि भारत पाक के जो मामले हैं खासतौर से कश्मीर, ये उनका द्विपक्षीय मामला है। पाकिस्तान हमेशा से अमेरिकी मध्यस्थता की मांग करता रहा है, वहीं भारत इसके खिलाफ रहा है। तो भारत में सरकार को निकी हेली, जो भारतीय मूल की है, उनका यह बयान नागवार गुजरेगा, इसमें कोई शक नहीं। विदेश विभाग से मेरी बात हुई, अमेरिकी विदेश विभाग से, तो उन्होंने कहा कि हम भारत और पाकिस्तान की सीधी बातचीत को प्रोत्साहित करते रहेंगे। यानी जो अब तक की नीति रही है ये उसी से मिलती जुलती बात थी, लेकिन मेरे एक सूत्र ने मुझे बताया, जिनका नाम नहीं दिया जा सकता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि निकी हेली का ये बयान विदेश विभाग के अधिकारियों के लिए भी चौंकाने वाला था और वो देख रहे हैं कि क्या ये सोच समझ कर लिया गया फैसला है या फिर कोई ऐसी बात हुई है जिस पर कि बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दी गई है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ब्रिटिश उपाध्याय वॉशिंगटन से।
दिन भर शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5885, 7600, 9740, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
जानी मानी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका किशोरी अमोनकर का कल रात मुंबई में निधन हो गया। वो 84 साल की थी। कला और संगीत के प्रति उनके योगदान के लिए अमोनकर को 1987 में पद्म भूषण और 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं वैभव दीवान।
गान सरस्वती कही जाने वाली शास्त्रीय संगीत गायिका किशोरी अमोनकर का सोमवार रात को निधन हो गया। वो 84 वर्ष की थी। प्यार से किशोरी ताई कहलाए जाने वाली किशोरी अमोनकर जयपुर घराने की शिष्य थी, जिन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में मेहनत से अपना परचम लहराया। उनकी गायन शैली में ख्याल, ठुमरी और भजन भी शामिल थे। किशोरी ताई के साथ कई सालों तक तबला बजाया पाल कृष्ण अय्यर ने, जिन्होंने उनकी मृत्यु के बारे में बताया।
कल रात को 8 बजे उनको थोड़ा सा बैक पेन हो रहा था, इसलिए वो सोने चली गई और उन्होंने कहा मुझे थोड़ा सा कुछ सूप दे दो, मैं सूप पी करके थोड़ा आराम करती हूँ। तो 8 बजे वो सूप लेकर के रूम में गई। उन्होंने कहा मुझे कुछ डिस्टर्ब ना करे, आधा पौन घंटा मैं आराम करना चाहती हूँ। तो उसके बाद 1 घंटे के बाद करीब 9:30 बजे उनके शिष्य ने दरवाजा खोला कि भाई अब रात हो गई, कुछ खाना खा के सोए हैं। तो देखा तो सो रही है, तो फिर 15 मिनट के बाद देखा तो उसी पोज में सो रही है। तो उनको थोड़ा सा डाउट हुआ, तो बाद में जाके देखा तो चेहरा थोड़ा अलग दिखाई दिया और शरीर भी उनको ठंडा लगा। तो चिल्लाए, बाकी लोगों को बुलाया, नींद में ही उनको हार्ट अटैक हुआ।
पिछले ही हफ्ते दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में किशोरी अमोनकर का एक प्रोग्राम था। उनके ढेरों कॉन्सर्ट्स देख चुके वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप कुमार किशोरी अमोनकर के भारतीय शास्त्रीय संगीत को उनके योगदान के बारे में बताते हैं।
उनका सबसे बड़ा योगदान ये है कि उन्होंने जो उनका घराना था जयपुर अतरौली घराना, उसको एक नई दिशा दी और उसके अंदर किराना घराने की बढ़त का जो तत्व है उसका समावेश किया और उसको एक भावप्रवण एक गायकी में तब्दील किया। क्योंकि अक्सर जयपुर घराने की गायकी पे अतिशय बौद्धिक होने का आरोप लगता था, तो किशोरी अमोनकर ने उसको एक भावप्रवणता दी जो कि एक नई बात थी। दूसरी बात यह कि वो अपने समय के गायक गायिकाओं में इसलिए भी विलक्षण थी कि उनमें रचनात्मकता बहुत थी, एक कल्पना विलास जिसे हम कह सकते हैं। जब गाती थी तो किसी भी राग के ऐसे ऐसे अछूते जगह वो दिखाती थी, सुनने वालों को उसका रोमांच हो जाता था।
कहा जाता है कि किशोरी अमोनकर काफी गुस्से वाली थी और उनके प्रोग्राम के बीच अगर कोई श्रोता उठता था तो वो गाना बंद कर देती थी। शास्त्रीय संगीत गायिका शुभा मुद्गल को एक बार किशोरी अमोनकर को एयरपोर्ट से लाना था, वो डरते डरते गई और हुआ क्या, शुभा मुद्गल ने बीबीसी हिंदी को बताया।
काफी टूटी फूटी एक 800 मारुति थी और उनके लिए मैं चला के वो एयरपोर्ट गई थी और उनके लिए एक बहुत अच्छी सी कोई गाड़ी भेजी गई थी, लेकिन उन्होंने गाड़ी देखी और फिर कहने लगी कि तुम किस गाड़ी में आई हो। तो मैंने कहा जी मैं अपनी गाड़ी में आई हूँ, मैं आपके पीछे पीछे आती हूँ, कौन सी गाड़ी है तुम्हारी? तो मैंने कहा कि मेरी तो छोटी सी टूटी फूटी सी मारुति है 800। तो उन्होंने कहा मैं तेरे साथ चलूंगी और बैठ गई मेरी गाड़ी में। अब मेरी टूटी फूटी सी लाल 800 मारुति में मैं किशोरी ताई को उनकी वाहन चालक बन के उनको होटल तक ले गई।
किशोरी अमोनकर के ऐसे कई किस्से मशहूर हैं। उनके साथ तबला बजाने वाले बालकृष्ण अय्यर ने 20 साल उनके साथ तबला बजाया और उनसे काफी कुछ सीखा।
देखिए शैली तो उनकी अद्भुत थी, दुनिया से अलग। उनमें मैंने तीन खास बातें देखी हैं। एक तो ये है कि सिंसियरिटी, आप अपनी कला से हमेशा सिंसियर रहिए, पहली बात। दूसरा प्रोफेशनलिज्म कि आप इसको पूरे थोरो प्रोफेशन होकर काम करिए, इसमें कोई एमेच्योरिश नहीं होना चाहिए। और तीसरा वो हमेशा कहती थी कि यू पुट योर फुट डाउन। वो हमेशा मुझसे अंग्रेजी में बात करती थी, उनको अंग्रेजी में बोलने का बड़ा शौक था, उर्दू या अंग्रेजी दोनों में मुझसे बात करती थी। वो कहती थी कि नहीं तुम अपनी चीज को जो है तुम्हें इतना विश्वास है तुम्हारे पर, तो यू पुट योर फुट डाउन, बस मुझे ऐसा चाहिए, मतलब ऐसा ही चाहिए, वो इनका कैरेक्टर था।
भारत सरकार ने किशोरी अमोनकर को वर्ष 1987 में पद्म भूषण और साल 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कई दिग्गजों ने किशोरी अमोनकर की मृत्यु पर शोक जताया। गान सरस्वती किशोरी अमोनकर का जाना भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। वैभव दीवान, BBC हिंदी।
भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के सज्जादा नशीन जैनुल आबदीन ने गोहत्या रोकने के लिए पूरे मुल्क में गुजरात जैसा कानून बनाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भी गोमांस से दूर रहना चाहिए। दरगाह दीवान आबदीन ने तीन तलाक कानून में भी सुधार पर जोर दिया है। कुछ मुस्लिम संगठनों का कहना है कि इस कानून में सुधार की गुंजाइश है, लेकिन सरकार को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। जयपुर से नारायण बारेट की रिपोर्ट।
अजमेर दरगाह के सज्जादा नशीन और आध्यात्मिक प्रमुख जैनुल आबेदीन ने कहा कि अब वक्त आ गया है जब गोवंश की सभी प्रजातियों के वध और मांस की बिक्री पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। जैनुल आबेदीन अजमेर में उर्स के मौके पर देश की विभिन्न दरगाहों के सज्जादा नशीन और प्रमुखों से मुखातिब हुए और कहा, गोमांस या बीफ को लेकर तनाव की घटनाएं होती रही है, इसमें सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है और रिश्तों में दरार आती है। उन्होंने गुजरात में गोवध को लेकर बनाए गए कानून का उदाहरण दिया और कहा, ऐसे कानून की पूरे मुल्क में जरूरत है।
कानून बनाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल मजबूर होगी गवर्नमेंट, और पूरे गौवंश के जो है उसके भलाई के लिए, उसके बचाव के लिए, वंश को आगे के लिए बचाने के लिए हमें पाबंदी लगाना जरूरी है। जिस तरह से गुजरात के अंदर गुजरात गवर्नमेंट ने लगाई है, सेम पैटर्न के ऊपर नेशनल लेवल के ऊपर जो है ये पाबंदी लगाई है।
दरगाह दीवान ने कहा कि इससे हिंदू समाज की भावनाएं आहत होती है, तो मुसलमानों को गोमांस सेवन को त्याग देना चाहिए। उन्होंने विभिन्न दरगाह प्रमुखों और सूफियों के बीच कहा, वे और उनका परिवार कभी बीफ का सेवन नहीं करेंगे। दरगाह दीवान ने तीन तलाक के मुद्दे पर भी अपनी राय दी और कहा, एक ही साथ तीन तलाक के उच्चारण को शरीयत ने नापसंद किया है, मुसलमानों को शरीयत की नाफरमानी से बचना चाहिए।
तलाक के ऊपर जो है उसके अंदर से इतना कहना मुनासिब है कि एक सिटिंग के अंदर अगर तीन तलाक दी गई हैं, तलाक तो वैलिड है लेकिन वो शरई तौर पर कुरान की रोशनी के अंदर मकरूह है। लेकिन अगर आपस में पति पत्नी के बीच में, मियां बीवी के बीच में किसी किस्म की नाइतफाकी है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि मीडिएटर की हैसियत से उनके दोनों के रिलेटिव्स को बीच में ला करके उनको कम्प्रोमाइज कराएं, और अगर नहीं बैठता है तो पति जो है वो उसको एक तलाक दे और पहले हैज तक यानी मासिक धर्म तक वो उसका वेट करे। दूसरे अगर वो आ जाती है उसके अंदर कंट्रोल में, उसके कहने के अंदर जिस तरह से वो उसको चाहता है उस तरह से, तो ठीक है, वरना तलाक दे सकता है। उसके बाद वो तीसरे मासिक धर्म का इंतजार करे, तीसरे मासिक धर्म तक अगर वो राय रास्ते पर आ जाती है और उनके अंदर किसी किस्म की जो वो है वो दूर हो जाता है, वेल एंड गुड है। अदरवाइज जो अल्लाह का कानून है, शरीय कानून है, उसके हिसाब से जो होगा। देखिए तलाक का जो दुरुपयोग हो रहा है वो है नौजवान बच्चे और बच्चियों की, तो नौजवान बच्चे बच्चियों की जिस वक्त शादी होती है उस वक्त निकाह नामे की पाबंदी होती है और गवाह वगैरह होते हैं। इसी तरह से शरीय तौर पर अगर वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, उलमा कराम और मुफ्तियान उज़्ज़ाम कोई बीच का रास्ता इस तरह से निकालें कि तलाक के मसले के ऊपर भी जिस तरह से निकाह के अंदर दोनों पार्टियों के दोनों तरफ के लोग शरीक होते हैं, इस तरह से तलाक के मसले के ऊपर भी दोनों तरफ के लोग शरीक हों ताकि उनकी जिंदगी जो है नौजवानों की वो बर्बाद होने से बचे।
जैनुल आबेदीन ने कहा कि जब निकाह दोनों परिवारों की मौजूदगी और रजामंदी में होता है तो तलाक में एकांत क्यों। वे कहते हैं तलाक में औरत के साथ संवाद को पुख्ता किया जाना चाहिए। जमात इस्लामी के निजामुद्दीन कहते हैं दरगाह दीवान के इन सुझावों पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार को शरीय मामलों में दखल नहीं देना चाहिए।
तलाक का जो कुरान में तरीका बताया गया है उसी के मुताबिक होनी चाहिए, और तलाक के मामले में जो थोड़ा सा गलत तरीके से देने का जो एक प्रवृत्ति बढ़ रही है, मान लीजिए अगर उसको मान लिया जाता है तो उसमें सुधार होना चाहिए। लेकिन इसमें ये जरूर हमारा कहना है कि ये जो किस्म की चीजें ये शरीयत से जुड़ी हुई है, कुरान से जुड़ी हुई है, इस्लामी समाज से जुड़ी हुई है, इसलिए इसमें सरकार को इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए।
दरगाह दीवान का ये बयान तब आया है जब ये दोनों मुद्दे धर्म और राजनीति में बहस का मुद्दा बने हुए हैं। नारायण बारेठ, जयपुर, राजस्थान।
अजमेर दरगाह के सज्जादा नशी ने गोमांस और तलाक पर अपने विचार रखे। और अब खेल समाचारों पर नजर डालते हैं राखी शर्मा के साथ।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूं राखी शर्मा। क्रिकेट के सबसे लोकप्रिय टूर्नामेंट में से एक आईपीएल के 10वें सीजन की शुरुआत कल से हो रही है। लीग का आगाज डिफेंडिंग चैंपियन हैदराबाद सनराइजर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीमों के मुकाबले से होगा। बैंगलोर की टीम चोट से जूझ रही है। टीम के रेगुलर कप्तान विराट कोहली कंधे की चोट के चलते कुछ हफ्तों के लिए आईपीएल से बाहर रहेंगे। वहीं एबी डिविलियर्स भी चोटिल हैं और कम से कम पहले मैच से तो बाहर हैं ही। ऐसे में पहले मैच के लिए टीम की कमान ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर शेन वॉटसन को सौंपी गई है। वहीं 19 साल के युवा बल्लेबाज सरफराज खान भी आज प्रैक्टिस के दौरान पांव में चोट खा बैठे हैं। मुमकिन है कि उन्हें पूरे टूर्नामेंट से ही बाहर बैठना पड़ेगा। ऐसे में आरसीबी का पूरा दारोमदार क्रिस गेल और शेन वॉटसन के कंधों पर है। उनके लिए राहत की बात सिर्फ इतनी है कि विराट कोहली ड्रेसिंग रूम में टीम के साथ जुड़े रहेंगे। इस बात से कितना फायदा उठा सकती है बैंगलोर की टीम, बता रहे हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय लोकपल्ली।
देखिए, विराट का प्रेजेंस जिसे कहते हैं, जैसे ड्रेसिंग रूम में बैठा रहेगा और वो अपने इनपुट्स उनके जरूर काम आएंगे आरसीबी के लिए। और मेंटोर तो मैं नहीं कहूंगा, मेंटोरिंग के लिए तो अगर आप देखें उनके पास सबसे इम्पोर्टेंट डिविलियर्स हैं जो मेंटोरिंग कर सकते हैं, और विराट कितना इन्वॉल्वमेंट रखेंगे इसमें अभी कहना मुश्किल है, पर उनकी उपस्थिति ड्रेसिंग रूम में डेफिनेटली एक मोटिवेटिंग काम करेगी।
वहीं सनराइजर्स हैदराबाद टीम के कप्तान डेविड वार्नर इस टीम के सबसे अहम और मैच विनिंग खिलाड़ी हैं। हाल के मैचों में वार्नर कुछ खास नहीं कर पाए, फिर भी माना जा रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी वो टीम के सबसे अहम खिलाड़ी साबित होंगे। उनके अलावा टीम को शिखर धवन से भी उम्मीदें हैं, जो देवधर ट्रॉफी में काफी सफल रहे थे। इसके अलावा हैदराबाद के पास युवराज सिंह भी मौजूद हैं, जो मिडिल ऑर्डर में टीम को मजबूती देंगे। हैदराबाद की गेंदबाजी की कमान मुख्य रूप से आशीष नेहरा और भुवनेश्वर कुमार के हाथों में रहेगी। वहीं भारत की स्टार जिमनास्ट दीपा कर्माकर अगले महीने से होने वाली एशियन चैंपियनशिप में भाग नहीं लेंगी। हाल ही में दीपा के घुटने की सर्जरी हुई है और उन्हें रिकवर करने में वक्त लगेगा। एशियन चैंपियनशिप 18 मई से थाईलैंड में होगी। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
जैसा कि राखी बता रही थी, सबको आईपीएल की शुरुआत का इंतजार। और अब सभा के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ योगी सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों का फसली कर्ज माफ करने का फैसला किया है। सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के मुताबिक बैठक में कुल 36,359 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का फैसला किया गया है। इसका फायदा 2 करोड़ से ज्यादा किसानों को होगा। कैबिनेट ने कुल 9 फैसलों पर मुहर लगाई। सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले इदलिब प्रांत में हुए संदिग्ध गैस हमले में कम से कम 58 लोगों के मारे जाने की खबर है। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि सीरिया के संदिग्ध गैस हमले की प्राथमिक जवाबदेही सरकार की है। फ्रांस ने इस मामले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाने की मांग की है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग मेट्रो में हुए धमाके की जाँच कर रहे अधिकारियों का कहना है कि हमले का मुख्य संदिग्ध किर्गिस्तान मूल का रूसी नागरिक अकबर जोन जलीलोफ है। दक्षिण अफ्रीका की ट्रेड यूनियन फेडरेशन कोसाटू ने राष्ट्रपति जैकब जुमा से पद छोड़ने को कहा है। गठबंधन की एक अन्य सहयोगी साउथ अफ्रीकन कम्युनिस्ट पार्टी पहले ही कह चुकी है कि अब जुमा की विदाई का वक्त आ गया है। एक दुर्लभ गुलाबी हीरे ने हांगकांग में हुई नीलामी में 7,10,00,000 डॉलर यानी करीब 4,62,00,00,000 रुपये हासिल कर नया रिकॉर्ड बनाया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे शाकिर आलम, रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।